वो भी है 27 जुलाई 1967। रिकॉर्ड चुना है से निराला कोई और नहीं। मीठे मीठे बच्चे सब यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। भोलानाथ किसको कहा जाता है? भोलों का जो नाथ है, स्वामी है, जो भोले नहीं है तो कैसे होंगे? भोले नहीं है तो कैसे होंगे? दूसरों को दुख देने वाले होंगे, तिकड़म करने वाले होंगे, तो भोलानाथ कहा जाता है। तुम संगम की ब्राह्मण ही जानते हो कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। कलयुगी मनुष्य जो है वो रिंचक भी नहीं जानते कि भोलानाथ कौन है। ज्ञान का सागर भी एक ही बाप है, वही सच की आज मध्यंत का ज्ञान समझाते हैं। अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। क्या समझते हो अभी? अभी क्या समझते हो? पहले नहीं जानते थे भोलानाथ के बारे में, अभी समझते हो, आगे नहीं जानते थे। साधु संत आदि कुछ नहीं जानते, वो तो कहते हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। तो नहीं जानते हैं तो उनको क्या कहेंगे? जो रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं उनको कहेंगे नास्तिक। और तुम जानते हो तो तुमको कहेंगे आस्तिक। किसके ऊपर आस्था रखते हो? बाप को पहचान करके बाप के ऊपर आस्था रखते हो। जो जानते ही नहीं है तो आस्तिक होने का सवाल ही नहीं। किसके ऊपर आस्था रखेंगे? जानते तो है नहीं। न जानने के कारण ग्लानी ही करते रहते हैं। तुम जानते हो, पहचानते हो तो महिमा करेंगे, पहचानते हो तो महिमा करेंगे, नहीं पहचानते हैं तो ग्लानी करेंगे। बाप कहते हैं मैं ही आए भारत को स्वर्ग बनाता हूं, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आता हूं। जिस मकसद से आता हूं वो मकसद पूरा करके जाता हूं या बीच में चला जाता हूं? जो नहीं जानते हैं वो क्या समझते हैं कि आता है? जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, धर्म की अपने अपने धर्म की धारणाएं सुनाकर चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी आता होगा, धर्म की धारणाएं सुनाकर चला जाता होगा ब्रह्मा के धर्म से। वो तथाकथित ब्राह्मण भी ऐसा ही समझते हैं। तुम जानते हो कि बाप जिस मकसद से आते हैं वो मकसद पूरा करके जाते हैं। बाप है ही सदा स्व स्थिति में रहने वाला, सदाशिव कहा जाता है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहने वाला सदाशिव है वो ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है। जो स्वयं स्थिति में रहने वाले नहीं है, देह की स्थिति में रहने वाले हैं, देवान में आने वाले हैं, देहधारी है, वो नरक स्थापन करते हैं। स्वयं स्थिति में रहने वाला स्वर्ग स्थापन करता है, और स्वर्ग में जो भी होते हैं वो सब स्वयं स्थिति वाले होते हैं। एक भी ऐसा नहीं होगा जो देहभान वाला हो। वेद का वर्षा देता हूं, कौन सा वर्षा वेद का देता हूं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। वो वर्षा अभी तुम ले रहे हो, अभी ले रहे हो, ऐसे नहीं कि भविष्य जन्मों में ही लेंगे। मुक्ति की स्टेज का अनुभव करते हो इसी युग में, और जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्ति की स्टेज का अनुभव करते हो, अर्थात सुख अनुभव करते हो। जानते हो वेद के भाव से हम वेद का सुख का वर्षा ले रहे हैं? ये भी बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ऐड न हो सकता है और न कम हो सकता है, फिक्स है ड्रामा, और सभी एक्टर्स को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, कोई कहते हम मोक्ष को पावेंगे सदा के लिए, इस जन्म मरण की दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। बाप कहते हैं मोक्ष कब हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता कि आत्माएं मोक्ष को पा जावे, आत्माएं सदा काल के लिए मुक्त हो जावे और भगवान को बार बार इस सृष्टि पर आना पड़े? तो भगवान हमेशा के लिए बंधन में हो गया और आत्माएं सदा के लिए मुक्त हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ड्रामा फिक्स है। जो जो जिस धर्म का है फिर उसी धर्म में जाने वाला है। क्रिश्चियंस आदि बौद्धि आदि इच्छा करें कि हम स्वर्ग में चले जावेंगे, परंतु जो अपने अपने धर्म के पक्के बौद्धि हैं, क्रिश्चियन हैं, वो कब स्वर्ग में आ नहीं सकते। जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए होंगे, बौद्धि धर्म में कन्वर्ट हुए होंगे, माने पक्के बौद्धि नहीं है, वो आ सकते हैं स्वर्ग में, आवेंगे, परंतु स्वर्ग का पक्का वर्षा पा नहीं सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि उनको अनेक जन्मों का, उन धर्मों का संग का रंग लगा हुआ है। तो जब बाप आते हैं, असली परिचय देते हैं, तो उनकी बुद्धि तिरक जाती है, पक्का विश्वास नहीं बैठता। उनका जो धर्म स्थापक होता है, आता है, तब उनका पाठ चलता है। जो कन्वर्ट होने वाले हैं, उन कन्वर्शन होने वालों में भी कोई मुखिया होता है। जब उसका पार्ट खुलता है तो उनकी बात बुद्धि में आ जाती है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है। कैसे? कैसे नास्तिक है? उन्हें कोई पर आस्था नहीं है क्या?
बाप को पहचानते
हैं, बाप को पहचानते
हैं। जिनके ऊपर आस्था है वो सब उनकी आस्था को तोड़ने वाले हैं, और जिनके ऊपर आस्था रखे बैठे हैं वो भगवान तो है नहीं। बांति माति के गुरुओं को, धर्म पिताओं को भगवान समझ करके बैठे हैं, वो सब आस्था को उखाड़ने वाले हैं। बाप जब आते हैं तो सारी दुनिया की आस्था अपने ऊपर बैठाते हैं, परंतु है नंबर वार, एक जैसा नंबर नहीं है सबका। आस्थावान भी एक जैसे नहीं है। तो जो नास्तिक है वो बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही नास्तिक बनते हैं, मनुष्य ही आस्तिक बनते हैं। मनुष्य ही तो बाप को जानेंगे ना, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्यों के बाप को मनुष्य ही जानेंगे। मनुष्यों के बाप में वो निराकार शिव जो भगवान कहा जाता है वो प्रवेश करता है। ये नाटकशाला है ही मनुष्यों की। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है, पाठ बजाने के लिए आती है। पाठ बजाते बजाते शरीर के सुख भोगते भोगते आत्मा कमजोर हो जाती है। कमजोर आत्मा सुख नहीं भोग सकती, खुद भी दुखी होती है, दूसरों को भी दुखी करती है। तो बाप आते हैं फिर से पुरुषार्थ कराते हैं, निर्बल आत्मा को प्रबल बनाने का। निर्वाण धाम में ले जाते हैं पुरुषार्थ कराने के बाद। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अरे बुद्ध वाणी से परे गया, वाणी आत्मा शरीर के द्वारा चलाती है कि शरीर के बिगैर आत्मा चलाती है? शरीर के द्वारा आत्मा वाणी चलाती है। तो पार निर्वाण कैसे गया? कोई भी पार निर्वाण जा नहीं सकते जब तक बाप आकर के न बतावे कि तुम आत्मा हो। बुद्ध पार निर्वाण गया परंतु उसका शरीर तो नहीं गया ना। आत्मा गई, परंतु कहां गई? निर्वाण धाम में वापस जाती है क्या? निर्वाण धाम नहीं।
संदेह,
कोई भी धर्म पिताएं चाहे बुद्ध हो या कोई भी हो, जब इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या वापस निर्वाण धाम जाते हैं? जा ही नहीं सकते। वो सब देहधारियों के संग के रंग में आते आते अपन को देह समझ बैठते हैं, निर्वाण धाम जाने का बात ही नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी जाता नहीं है। नाट ताकत से कोई भी निकल नहीं सकता। ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, एक बार शुरू होता है तो सब एक्टर्स को आना ही पड़ता है, सब आकर के इकट्ठे होते हैं, फिर सब इकट्ठे वापस जाते हैं। कोई भी बीच में मोक्ष नहीं पा सकता। तो बना बनाया ड्रामा है, कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, तो उस मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि हम सदाकाल के लिए मुक्त हो जाए। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिनकी बात मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको नहीं मिल सकता, तुम जानते हो, हम सब इस ड्रामा में पार्टधारी है। हम कब आए, फिर कैसे जावेंगे, ये किसी को नहीं मालूम। परंतु जानवर तो ये बातें नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही जानेंगे। मनुष्य कहते हैं हम एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं, ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। जिस कर्म क्षेत्र में आत्माएं रहती हैं, शरीर धारण करके निर्वाण धाम में तो शरीर होता नहीं, वाणी भी नहीं होती, उसको कोई कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता है। किसको? निर्वाण धाम को। वो तो निराकार दुनिया है, कर्म होता है शरीर के द्वारा। तो निर्वाण धाम में कोई खेल पाल आदि एक्ट आदि नहीं है, उस निराकार दुनिया से साकार दुनिया में आते हैं। इसलिए आते हैं, पार्ट बजाने के लिए आते हैं, वही पार्ट फिर रिपीट होता रहता है। तो शाश्वत प्रलय कभी होती नहीं है। जो समझते हैं सदाकाल की, इसलिए ये दुनिया लीन हो जाएगी, ये बात कहां से निकली कि प्रलय हो जाती है? प्रकृष्ट रूप से ये दुनिया लीन हो जाती है, कहां से निकली ये बात? शास्त्र से ये बात निकली। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी कुछ भी रहा नहीं, इससे समझते हैं कि प्रलय हो गई। परंतु ये सब बातें बैठ बनाई हैं, प्रलय कभी होती नहीं है। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसते हुए आया, अब है कहां की बात? कैसे?
प्रजापिता मतलब प्रजापिता और जगदम्बा की जो आत्मा है वो पीपल का पत्ता है, और उसमें दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल, वो उसमें प्रवेश करके बीज रूप अवस्था में टिकती है।
उससे भी शुरुआत की बात है, प्रलय दिखाई गई, तो बाद की बात हुई कि पीपल के पत्ते पर कोई बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। पीपल का पत्ता है, कोई हिलने डुलने वाली आत्मा? इसी पीपल पात सरिसमन डोला, जिसका मन बहुत डुलायमान होता है, निश्चय अनिश्चय बुद्धि में आता है। सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय बुद्धि के चक्र के चक्कर में कौन आता है?
ब्रह्मा
आता है। परंतु ब्रह्मा ने तो शरीर पहले ही छोड़ दिया,
जगदम्बा
ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, तो जरूर कोई में प्रवेश करता है। जिसके लिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए इनके चार्ज में कन्या माताओं को कैसे रखा जाए? तो ब्रह्मा आदि को निमित्त बनाएंगे। तो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जगदम्बा कैसे होगा? दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती, जगदम्बा की तो पूजा होती है। तो वास्तव में ये दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जगदम्बा कैसे बना? शरीर छोड़ने के बाद
जगदम्बा में प्रवेश
करता है, कोई चोले मात्र चोले में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है तो जिस चोले में प्रवेश करता है वो पीपल के पत्ते की तरह है। जैसे एक डोलने वाली नवैया है जिसके लिए बोला नैया डोलेगी हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसी नवैया में कृष्ण की आत्मा प्रवेश करती है। ज्ञान का गर्भ दिखाया गया है, संसार सागर है, पीपल के पत्ते की हल्की फुल्की नाव है, दोलायमान होने वाली, और बच्चा बड़े आराम से पड़ा हुआ है। ऐसे कहीं होता है कि अगाध सागर लहरा रहा हो और उसमें कोई छोटी सी डोंगी लेकर के निश्चिंत होकर के बैठा हुआ हो, तूफान आ रहे हो तो निश्चिंत होगा या चिंता होगी? चिंता होगी। लेकिन कृष्ण बच्चे के लिए दिखाते हैं शास्त्र में कि वो आराम से पड़ा हुआ है, तो कौन सा कृष्ण बच्चा है? संगम की कृष्ण की बात है कि नैया कितनी भी डोलने वाली हल्की फुल्की है, विषय सागर कितना भी विषय विकारों से भरा हुआ है, सारे संसार को विषय विकारों में डुबोने वाला है, फिर भी वो निश्चिंत स्टेज में पड़ा हुआ है ज्ञान गर्भ में। क्या करता है? अंगुष्ठा चूमता है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं आत्मा का रूप अंगुष्ठा मिसल। अंगुष्ठा मिसल क्यों दिखाया है?
हाथ में स्थिति में रहने से,
क्योंकि शालिग्राम का जो रूप है वो भी अंगूठे मिसल है। शालिग्राम माने आत्मा, तो आत्मिक स्थिति की मनन चिंतन मंथन की स्थिति में आराम से रहता है। मनन चिंतन मंथन की स्थिति परिस्थाई स्टेज का अनुभव करती है। जैसे फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता ही नहीं, तो तो दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसते हुए आए। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या दिखाया शास्त्रों? प्रलय दिखाई। उस प्रलय की घोषणा कहां हुई?
1976।
भगवान बाप ने ही वो घोषणा कराई कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, तो आप मुए मर गई दुनिया, जैसे कि प्रलय हो गई। शास्त्रों में दिखाया है वशिष्ठ जी भगवान को राम को क्या सुनाते हैं, हे राम ये संसार बना ही नहीं। जब बना ही नहीं तो उसमें बुद्धि रमाने की बात है ही नहीं, जैसे देखते हुए न देखना। तो प्रलय दिखाई दी है, कहते हैं मन के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो मन के संकल्पों से बिगड़ नहीं सकती, खलास भी हो सकती है। तो ये सब बातें बैठ बनाई हैं। अंगूठा चूसते हुए बच्चे से सृष्टि कैसे पैदा होगी? क्या जवाब हुआ है? मनन चिंतन मंथन की एक ऐसी स्टेज है जिसके लिए गाया हुआ है कि ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, मनुष्य तो जो कुछ सुनते हैं सत्य सत्य कहते रहते हैं, कहते हैं हनुमान हवा से पैदा हुआ, जो सुनेंगे सो कहेंगे सत्य। अब हवा से कैसे पैदा हुआ? हवा माने क्या?
सूक्ष्म शरीरधारी।
हवा माने सूक्ष्म शरीरधारी जो भूत प्रेत होते हैं उनको हवा कहा जाता है। फिर समझते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, तो इतने शास्त्रों की रचना व्यास भगवान ने की तो क्या सब शास्त्र झूठे हो सकते हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में क्या है? क्या है?
गपोड़े
कुछ भी नहीं।
भूसा।
शास्त्रों में द्वापर के आदि में जब शास्त्र बनना शुरू हुए थे तो फिर भी कुछ सच्चाई थी, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान बनती है। बाद में जैसे जैसे शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन होता गया भांति भांति के मनुष्य गुरुओं के द्वारा, वैसे वैसे शास्त्र भी तामसी बन गए। तो तुम जानते हो शास्त्रों में क्या है? ये सब भक्ति मार्ग के दुर्गति के शास्त्र हैं। क्यों?
तामसी धर्म। तामसी
क्योंकि शास्त्र बनाए हुए हैं अनेक मनुष्यों के द्वारा, भक्ति कहां से आती है? रावण के अनेक सिरों से। जो जिसने जैसा कहा बस उसके पीछे चल पड़े मानने लगे। तो अनेक मत से आती है भक्ति और एक मत से आता है ज्ञान। एक की मत से होती है सदगति और अनेकों की मत से होती है दुर्गति। भक्तों को फल देने वाला भगवान तो बाप ही है, काहे का फल देते हैं? भक्ति का फल देते हैं। अंधश्रद्धा युक्त है, जन्म जन्मांतर जो भक्ति करते आए उस भक्ति का फल भी भगवान ही आकर के देते हैं। क्या फल देते हैं? आकर के ज्ञान देते हैं। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जावेंगे, कौन मुक्ति में चले जावेंगे, कौन जीवन मुक्ति में चले जावेंगे? फल तो है एक ज्ञान का फल, फिर कोई मुक्ति कोई जीवन मुक्ति में क्यों जाते हैं?
कोई डायरेक्टली बाप से वर्षा लेते हैं,
जो साकार बाप को पहचानते हैं कि बाप भगवान भी इस सृष्टि पर साकार में आकर के कर्म करते हैं तो जीवन मुक्ति पाते हैं। और जो निश्चयात्मक बुद्धि से अंत तक नहीं पहचान पाते तो अंत मते सो गति, मुक्ति प्राप्त होती है, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हर एक पार्ट हरी आत्मा का जब पार्ट आवेगा तो फिर आवेंगे, कोई मुक्ति में आवेंगे, कोई जीवन मुक्ति में आवेंगे। तो ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानता। कहते हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अरे तुम ड्रामा के एक्टर्स हो और एक्टर्स हो करके ड्रामा के आदि मध्यंतर ड्यूरेशन को न जाने तो कैसा एक्टर कहेंगे? इडियट एक्टर। पार्टधारी हो और अपने पार्ट को न जाने, जिनके साथ पार्ट बजाता है उनके पार्ट को न जाने तो बेसमझ एक्टर हुआ ना, उनको आस्तिक कहेंगे। ड्रामा के डायरेक्टर के ऊपर उनको आस्था है?
नहीं,
आस्था नहीं है तो नहीं जानते, जरूर नास्तिक ठहरे। इस समय के मनुष्यों को जानवर से भी बदतर कहा जाता है। मनुष्य एक्टर होते हुए समझते हुए कि हमारी आत्मा पार्ट बजाने आती है, फिर भी अगर ड्रामा के आदि मध्यंत को न जाने तो जानवर से भी बदतर ठहरे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते। फिर समझाने से भी नहीं समझते। इस समय भारत पत्थर बुद्धि है, जो अपने वेद का बाप रचयिता और रचना जिसमें एक्ट करते हैं उनको बिल्कुल जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे। इतने सभी मनुष्य 84 लाख जन्म कैसे लेते हैं ये भी बुद्धि में नहीं आता। 84 लाख जन्म ले सकते हैं क्या?
नहीं।
84 लाख समझने के कारण उन्होंने ड्रामा का ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष कर दिया है। अगर 84 लाख योनि की बात बुद्धि में न बैठी होती तो बुद्धि में आता कि ड्रामा कोई लाखों वर्ष का नहीं है। कोई कोई शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि हर युग की आयु 1250 वर्ष है। फिर लाखों वर्ष 84 लाख योनी है समझने से बुद्धि भ्रमित हो गई और सारे 1200 वर्ष को देवताई वर्ष समझ करके उसमें उन्होंने गुणा कर दिया कि देवताओं का दिन देवताओं के वर्ष देवताओं का महीना लंबा चौड़ा होता है। अभी तुम कहते हो बाबा हम आपसे हर कल्प आकर के मिलते हैं 27-67 की वाणी का दूसरा भी 5-4 वर्ष पहले भी आकर के आपसे मिले थे मिलते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए ये था राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व का मालिक बनते हैं ये कैसे हो सकता है? मालिक एक होगा ये अनेक होंगे फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक कैसे समझेंगे अपने को हाँ। वो पारिवारिक व्यवस्था ऐसी थी सात्विक स्टेज वाली कि सारी दुनिया को लक्ष्मी नारायण अपना क्या समझते थे कुटुंब समझते थे हमारा परिवार है जो भी बच्चे हैं वो सब मेरे परिवार के बच्चे हैं और बच्चे भी क्या समझते थे कि सारी दुनिया हमारी है जैसे घर में परिवार में कोई बच्चा होता है बाप की दुकान चलती है तो बच्चा क्या कहेगा मेरी दुकान नहीं मेरे बाप की दुकान है
और हमारी दुकान
बच्चे को भी अपनापन महसूस होता है तो ऐसे अपनेपन की दुनिया थी जहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसी स्टेज वाली थी सबके अंदर अपनत्व था प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक जब तुम विश्व के मालिक बनते हो तो उस समय इसका राजी नहीं होता है
रावण का राजी
रावण का राजी
और जो रावण के सिर हैं चंद्रवंशी इस्लाम वंशी बौद्धी वंशी क्रिश्चियन वंशी उनमें से किसी का राज्य नहीं होता तो वो सूर्यवंशियों का राज्य होता है और कोई का राज्य नहीं होता माने और जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं उनके धर्म की धारणाएं 16 कला संपूर्ण डिग्री वाली नहीं है और तुम्हारी धारणा 16 कला संपूर्ण डिग्री वाली होती है तुम्हारा सूर्यवंशी राज्य चलता है तुम बच्चे सारी ड्रामा की आदि पर्यंत को जानते हो जो आदि को नहीं जानते वो मध्य और अंत को भी पूरा नहीं जान सकते तुम आदि को भी जानते हो मध्य और अंत को भी जानते हो मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं पूजा तो करते हैं लेकिन जिसकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को
नहीं जानते
जिनको माथा टेके जिनकी पूजा करें चिरौरी करें मान मर्तबा दें उनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए कि हम इतना मान मर्तबा उनको क्यों देते हैं क्यों उनकी पूजा करते हैं बायोग्राफी को जानना चाहिए ना एक भी मनुष्य नहीं है जो शिव की बायोग्राफी को जानता हो या तो कहेंगे वो तो निराकार है, निराकार है, बिंदी है, तो उसकी बायोग्राफी कहेगी। तुम बच्चे जानते हो बाप की बायोग्राफी को, तुम जान जाते हो। किसके द्वारा जानते हो? बाप के द्वारा बाप की बायोग्राफी को जान जाते हो। तुम बाप के बने हो ना, बाप की बायोग्राफी का पता है। वो बाप पतित पावन है, उसकी बायोग्राफी का मुख्य कर्तव्य क्या है? पतितों को पावन बनाने के लिए आता है। तुम जानते हो कि वो पतित पावन कैसे है, लिबरेटर है, गाइड है। तुमको कहते हैं पांडव, किसके बच्चे? पंडा के बच्चे हो। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पांडव पांडु के पुत्र थे। तो गाइड कहने से, पंडा कहने से एक गाइड हो जाता है, बाकी सब है उसकी गाइडेंस पर चलने वाले। नंबरवार है, एक की गाइडेंस पर चले वाले सब नंबरवार है। जब पंडे कहते हैं तो बहुत गाइड्स हो जाते हैं। तो तुम सभी के गाइड बनते हो ना रास्ता बताने के लिए, अंधों की लाठी बनते हो। यथा बाप गाइड पंडा, तथा तुम बच्चों को भी बनना है, तो सबको रास्ता बताने पड़े। तुम आत्मा और वो परमात्मा, उन परमात्मा बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वो बेहद का बाप है। आकर के भारत को बेहद का राज्य देते हैं। बेहद का राज्य कैसा? आज के राज्य हद के क्यों? क्योंकि हद लगी हुई है। ये हमारा आसमान है, हमारे आसमान में तुम्हारा जहाज कैसे आ गया? ये हमारा समुद्र है, हमारे समंदर में तुम्हारा जहाज कैसे आ गया? ये हमारी जमीन, ये तुम्हारी जमीन, हद लगाए रखी है। बाप आकर के तुमको ऐसा राज्य देते हैं जहां सारा आसमान तुम्हारा होगा, आसमान की कोई हद नहीं, सारा समंदर तुम्हारा होगा और सारी जमीन तुम्हारी होगी। भारत को ऐसा बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे अब जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का राज्य लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म भोगने के बाद अब शूद्र बने, और शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, फिर ब्राह्मण से उनको शिक्षा देकर ब्राह्मणों को क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। शूद्र को शूद्र बुद्धि कर्मजात कहा जाता है। इस समय सब मनुष्य मात्र शूद्र बुद्धि। बाप ने आकर के ब्राह्मण बनाया, क्योंकि यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। भक्ति मार्ग में भी यज्ञ रचते हैं तो निमित्त किसको बनाते हैं? ब्राह्मणों को निमित्त बनाते हैं। परंतु वो तो सिर्फ कहा जाता है ब्राह्मण, कोई ब्रह्मा की औलाद थोड़े ही होते हैं, और तुम तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की औलाद हो। तो ये ज्ञान यज्ञ है, भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, विदेशों में यज्ञ नहीं रचते। क्यों? क्योंकि भारत में ही भगवान आकर के ज्ञान देते हैं, भारतवासियों को ही भक्ति का फल देते हैं। उसमें भी जो यज्ञ रचने वाले होते हैं उनमें खास आर्य समाज बहुत यज्ञ रचते हैं। ये तो आंकी याद कर कैसे है? हाँ, बेसिक नॉलेज में भी देखा, कि ब्रह्मा बाबा जो ज्ञान देते थे उस ज्ञान का सबसे जास्ती विस्तार किस धर्म वाले व्यक्ति ने किया? जिसके द्वारा विस्तार हुआ वो पहले आर्य समाज ही था। ज्ञान में आने के बाद ज्ञान की बातों का उसने बहुत विस्तार किया।
जगदीश
विस्तार जास्ती करेगा तो सार रह जाएगा, विस्तार में सार छिप जाता है। तो ये आर्य समाज जो है जो बहुत यज्ञ रचते हैं, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो और धर्म वाले सार रूप में ज्ञान उठाते हैं फिर भी, लेकिन आर्य समाज ज्ञान का बहुत विस्तार कर देते हैं। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। आर्य समाज जो यज्ञ रचते हैं उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। क्यों? वो मनुष्यों के द्वारा रचा जाता है और यह
बाप के द्वारा।
ये भगवान रुद्र आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं रौद्र रूप धारण करके, एक बाप एक मुख से सुनाते हैं। अगर वही ज्ञान और मुखों से सुनाया जाता है तो मिक्सचरिटी हो जाती है। एक से सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा, अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सदैव एक से सुनना चाहिए। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। क्यों? सारी पुरानी दुनिया स्वाहा क्यों हो जाएगी? क्योंकि सारी दुनिया झूठी हो गई है। जो झूठ खंड है उसका विनाश होगा और सतयुग में सच खंड का बोलवाला होगा। तो अभी बुद्धि से काम लेना पड़ता है। क्या क्या बुद्धि से काम लेना पड़ता है? कि जो कुछ हम कानों से सुनते हैं, दुनिया में बातें तो बहुत सुनने को मिलती है ना, तो बातों में जाना चाहिए या ये देखना चाहिए कि जो बात हमने सुनी वो एक से आई है या अनेकों की बातें हैं? में तो बहुत मनुष्य हैं। इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आवेगी। इन आंखों से इस दुनिया की जो भी वस्तुएं देखते हैं वो सब सब खलास होने वाली है। सत्युग में तो फिर कुछ भी नहीं, पुराना रहेगा, क्या होगा
नया।
सब कुछ
नया।
सब कुछ नया होगा। यहां तो देखो कितना गंध है, मनुष्य कैसे कैसे गंदे गंदे रहते हैं, ऐसे रहते हैं
गंदे,
कैसे गंदे
हैं।
कोई कोई मनुष्यों को तो बड़े बड़े महलमाड़ियां हटा लिया है, एक मक्खी मच्छर भी उनके निवास में नहीं देखने को मिलेगा। और कोई तो कहां रहते हैं, झोपड़पट्टी में, नालों के किनारे रहते हैं। गरीब बेचारे कितने गंध में झोपड़ियों में पड़े। अब झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं क्या? जो गंध में झोपड़ियों में पड़े हुए हैं उनको क्या करते हैं, उन झोपड़ियों को
गिराते हैं,
बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको, फिर दूसरी जगह दे करके जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं तो वह जमीन जो झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करके बनी है, निकाली गई है, वो प्रॉपर्टी उन गरीबों की है। उसका पैसा उनको मिलना चाहिए। जो झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करके बड़ी बड़ी मल्टी मिलियनर्स बिल्डिंगें बनाते रहते हैं, मल्टी स्टोरी बनाते हैं, मिलता किसको है वो पैसा?
अमीर लोग।
वो अमीर लोग उसका पैसा खाते हैं, जिसके ऊपर वह बहुमंजिला इमारत खड़ी की जाती है। वास्तव में उस जमीन का पैसा उनको मिलना चाहिए। कोई बिल्डिंग बनती है तो जमीन की आधी कीमत और बिल्डिंग की आधी कीमत, परंतु गरीबों को तो कुछ नहीं मिलता। उन गरीबों को मिले हिस्से अनुसार तो बेचारे साहूकार हो जाए, परंतु उनको करने नहीं देते हैं, उनको बहुत ठगते हैं। अगर नहीं उठते हैं
जबरदस्ती उठे
तो युक्ति से आग लगा देते हैं। देखो गवर्नमेंट सबको लूटती रहती है, ऐसी ऐसी युक्तियों से गवर्नमेंट को धन बहुत मिलता है क्या? मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं। जो सुखी है वो भी स्थायी सुख नहीं। अगर सुख होता तो सन्यासी जिनको गुरु बनाते हैं वो क्यों कहेंगे ये कागविष्ट समान सुख है? वो कहते हैं नारी नरक का द्वार है, तुम्हारे पास उनकी चौपड़ी भी है, जो कहते हैं नारी नरक का द्वार है वो है शंकराचार्य क्या, तो नारी के बीच में से भाग जाते, अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या कह के भागते हैं, नारी नरक का द्वार। तो वो है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। क्या शिवाचार्य क्या करते हैं, नारियों को छोड़ करके नहीं भागते और ही नारियों को इकट्ठा कर देते हैं, और शंकराचार्य नारियों से कायर बन करके भागते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए, कमजोरी को छुपाने के लिए क्या कहते हैं, नारी नरक का द्वार। शिव भगवान वाच, अभी हमें इन माताओं के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोल रहा हूं, माताओं पर ज्ञान का कलश रखता हूं। क्यों
पवित्र
माताओं के ऊपर क्यों रखता हूं, पिताओं ने क्या खाम, क्या क्या खामी आ गई,
पुरुष
सब जोर जबरदस्ती करने वाले अबलाओं को और ही अबला बनाने वाले दुर्योधन दुशासन, इसलिए कन्याओं माताओं के ऊपर आकर ज्ञान का कलश रखते हैं। फिर वह ज्ञान की कलश में से ज्ञान अमृत पिलाती है, परंतु तुम्हारा तो है प्रवृत्ति मार्ग, तुम कोई निवृत्ति मार्ग के नहीं हो। ऐसे नहीं कि कन्याओं माताओं अकेली को पवित्र बनाते हैं, नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो और वो
झूठे हो,
क्यों
बाप को पहचानते नहीं,
कहलाते हैं ब्राह्मण, तो किसकी औलाद होना चाहिए,
ब्रह्मा
की औलाद होना चाहिए, परंतु उनका ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन, तुम्हारा ब्रह्मा बाप सूक्ष्म वतन में, तो तुम कहां से आ गए, तुम भी जाओ भाई। धीरे धीरे एक एक करके जाते भी रहते हैं, कहां जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते रहते। तुम सच्चे ब्राह्मण, क्यों, क्योंकि तुम ब्रह्मा बाप को अच्छी तरह जानते हो, वो है झूठे ब्राह्मण, वो हथियारा बांध काम शिक्षा पर बिठाते हैं, तुम ज्ञान शिक्षा पर बिठाते हो, तुम वह शादी बर्बादी का हथियारा तोड़ देते हो, जिन्होंने वो हथियारा उन ब्राह्मणों का बांधा हुआ है उस हथियारे को भी तोड़वाकर तुम ज्ञान चिता पर बिठाते हो। वो कामचिता पर बिठाते हैं हथियारा बांधकर, और तुम ज्ञान चिता पर बिठाते हो, तुम पवित्र बनाते हो और वो अपवित्र बनाते हो। अभी इस दुनिया में है अपवित्र असुर और आसुरी संप्रदाय, और तुम अभी बनते हो दैवी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य, गांधी जी कहते थे, क्या कहते थे, राम राज्य हो। राम राज्य हो इसका मतलब गांधी भी कौन से राज्य में थे,
रावण राज्य,
राक्षस राज्य में थे ना, परंतु अपन को राक्षस थोड़े ही मानते हैं। कहने वाले कहते हैं लेकिन अपन को राक्षस नहीं मानते। इसका मतलब क्या हुआ ने? वो था हदका गांधी और यहां है बेहदका गांधी, जिसके लिए मुरली में बोला है कि गांधी मरा जाकर के कोई साहूकार कांग्रेसी के यहां राजकोट में जन्म लिए। राजकोट माने राजाओं का किला, माना जो भी रुद्रमाला बनती है माला माने संगठन, वो किसका किला है? वो राजाओं का किला है। उस राजाओं के किले में, राजाओं के किले माने राजकोट में गांधी ने जाके जन्म लिया। माने गांधी वाली आत्मा जो बेहद का गांधी है, वो राजाओं के किले में जो मुख्य राजा है उसमें बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश कर जाती। कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहां जाकर जन्म लिया होगा, तो ये सब बेहद की बातें हैं जो बेहद का बाप समझाते। अच्छा, ओ सर।